नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दाहोद में लगभग 24,000 करोड़ रुपए लागत की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के दौरे पर गए भारतीय शिष्टमंडल ने विश्व नेताओं से कहा, आतंकवाद से मुकाबले के लिए भारत का नया रुख, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। भारत मालदीव उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में। जम्मू कश्मीर से मुंबई के लिए पहली चेरी मालगाड़ी अगले महीने से शुरू होगी। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। और विश्व चैंपियन डी गुकेश आज स्टावेयर में शुरू हो रहे नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के पहले दौर में मैग्नस कार्लसन का सामना करेंगे। समाचार प्रभात के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दो दिन के दौरे पर जा रहे हैं। वे राज्य में 82,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री दाहोद में लगभग 24,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। दौरे के पहले दिन वे दाहोद लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का लोकार्पण करेंगे और विद्युत रेल इंजन को रवाना करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी गुजरात सरकार के अन्य रेल और विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। इनमें वेरावल और अहमदाबाद के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस और वलसाड़ और दाहोद स्टेशनों के बीच एक्सप्रेस रेलगाड़ी शामिल है। इसके बाद प्रधानमंत्री भुज जाएंगे और 53,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी आज वडोदरा और भुज में विशाल रोड शो भी करेंगे।
दाहोद में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किए गए लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में अगले 10 वर्षों में 1200 इंजन का उत्पादन करने की योजना है। 4,600 टन के माल परिवहन की क्षमता वाले इस इंजनों में पहली बार इंजन एयर कंडीशनिंग, चालक के लिए शौचालय की सुविधा और सुरक्षा बढ़ाने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक उन्नत कवर सिस्टम जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। मेक इन इंडिया के तहत दाहोद के इस कारखाने में वर्तमान में 4 इंजन बन रहे हैं, जिसमें से सभी पर मैन्युफैक्चर्ड इन दाहोद का लेबल होगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से दाहोद और आसपास के इलाकों में 10,000 से ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की और क्षेत्र में स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड विजन को बढ़ावा देने हेतु इस योजना की आधारशिला रखी थी। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
आकाशवाणी समाचार से बातचीत में पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक ने बताया कि लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र न केवल भारत की रेल इंजन संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि विभिन्न अफ्रीकी और यूरोपीय देशों में रेल इंजन के निर्यात से मेक फॉर वर्ल्ड पहल को भी बढ़ावा देगा।
आने वाले 11 साल में 1200 से ज्यादा लोकोमोटिव को प्रोड्यूस करने का प्लान है। उनमें से कई लोकोमोटिव भारत के अंदर और कई लोकोमोटिव विदेशों में भी निर्यात किए जाएंगे। यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के लोकोमोटिव प्रोड्यूस करने का प्रावधान है, एक नॉर्मल गेज सिस्टम जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं भारत में, और एक स्टैंडर्ड गेज सिस्टम जो की कई देशों में इसका उस ट्रैक पे भी ट्रेनें चलती हैं। तो स्टैंडर्ड गेज वाले जो ट्रेन सिस्टम जिन भी देशों के पास है जहाँ की मालगाड़ी चलती है, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे हमारे पड़ोसी देश हैं एशिया में, उनमें भी इनका निर्यात किया जाएगा।
दाहोद विनिर्माण संयंत्र में तैयार इंजनों से भारतीय रेलवे की माल ढुलाई क्षमता बढ़ेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह नागपुर के जामठा में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के स्वस्ति निवास की आधारशिला रखेंगे। वे आज दोपहर कामठी ब्लॉक के चिचोली में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के नागपुर कैंपस की भी आधारशिला रखेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज से महाराष्ट्र के 3 दिन के दौरे पर हैं। इस बीच राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति डॉ जेएम व्यास ने बताया कि विश्वविद्यालय के इस नए कैंपस से कौशल संपन्न फोरेंसिक विशेषज्ञ तैयार होंगे। नागपुर कैंपस विश्वविद्यालय का 11वां और महाराष्ट्र में पहला कैंपस होगा। नागपुर के बाद श्री शाह आज नांदेड़ में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। गृहमंत्री कल मुंबई जाएंगे और विभिन्न आयोजनों में भाग लेंगे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान से चलाए जा रहे आतंकवाद से निपटने के लिए अब नया रुख अपना लिया है और ऐसे अपराधों में शामिल लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों को अब ये सोचने नहीं दिया जाएगा कि वे सीमा पार जाकर निर्ममता से हमारे नागरिकों की हत्या करेंगे। श्री थरूर ने कल न्यूयॉर्क में एक सामुदायिक आयोजन में कहा, इन अपराधियों को अब ऐसे अपराधों का मूल्य चुकाना होगा। श्री थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय शिष्टमंडल गयाना के उपराष्ट्रपति भरत जगदेव से भी मिला। श्री थरूर ने कहा कि गयाना के उपराष्ट्रपति ने पाकिस्तान के साथ मौजूदा हालात पर भारत की स्थिति को समझा और समर्थन व्यक्त किया।
It was a phenomenal meeting. I actually called him Mr. President because he was president for 12 years before his current role of vice president. He showed a tremendous amount of understanding for our position on the current events with our neighbor. But equally, we had a much broader ranging conversation about Guyana's development and the scope for India to be part of this narrative. There's a tremendous expansion taking place. Guyana has discovered a lot of oil and gas. And with that, there's tremendous infrastructural changes happening.
विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सर्वदलीय शिष्टमंडलों के प्रयासों की सराहना की है। मन की बात कार्यक्रम में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य अभियान नहीं है, बल्कि ये बदलते भारत का स्वरूप भी है, जो देश के साहस और संकल्प तथा विश्व में उसकी बढ़ती ताकत को स्पष्ट करता है।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया।
भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नूर खान एयरबेस को पहले के आकलन से कहीं अधिक नुकसान हुआ है। रक्षा विश्लेषक डेमियन साइमन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस के निरीक्षण से पता चलता है कि भारत के हमले से निकट का पूरा परिसर ध्वस्त हो गया था। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की जबरदस्त सफलता के उत्साह के बीच समग्र राष्ट्र भारतीय जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता के रूप में आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले परमवीर चक्र विजेता कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद का स्मरण कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1933 में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जन्मे कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद दिसंबर 1954 में चार ग्रेनेडियर्स में भर्ती हुए थे। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान चार ग्रेनेडियर्स ने खेम करण भिखिविंड मार्ग पर चिमा गांव के पास एक महत्वपूर्ण स्थान पर कब्जा किया। इस स्थान पर कब्जा करना समग्र रक्षा रणनीति के लिए महत्वपूर्ण था। 8 सितंबर की रात पाकिस्तानी सेना ने ग्रेनेडियर्स के ठिकानों पर कई हमले किए, लेकिन इन हमलों में दुश्मन को खदेड़ दिया गया। 10 सितंबर की सुबह भीषण गोलाबारी के साथ साथ पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों की एक रेजिमेंट ने बड़ा हमला किया। इस हमले से बटालियन के क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचा। उसी सुबह 9 बजे तक दुश्मन के टैंक अग्रिम ठिकानों पर पहुंच गए थे। इस महत्वपूर्ण क्षण में एक रिकॉयललेस गन की कमान संभाल रहे कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद ने तेजी से कार्रवाई की। वह भारी गोलाबारी के बीच अपनी बंदूक को जीप पर चढ़ाकर एक तरफ गए और बड़ी ही सटीकता के साथ उन्होंने दुश्मन के मुख्य टैंक को नष्ट कर दिया और टैंक को नष्ट करने के लिए उन्होंने अपना स्थान बदला। मशीन गन और शेल फायर के निशाने पर होने के बावजूद उन्होंने दुश्मन से लगातार मुठभेड़ जारी रखी। इस गोलाबारी के बीच एक अन्य टैंक को नष्ट करने का प्रयास करते समय एक उच्च विस्फोटक शेल से वे घातक रूप से घायल हो गए। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद की निडरता और दृढ़ साहस ने उनके साथियों को प्रेरित किया और दुश्मन को आगे बढ़ने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी इस बहादुरी और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
मालदीव के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल्ला खलील 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। इस वर्ष डॉक्टर खलील की यह तीसरी भारत यात्रा है। इससे पहले जनवरी और मार्च महीने में उनका आगमन भारत में हुआ था। भारत और मालदीव के बीच उच्च स्तरीय राजनीतिक विचार विनिमय के तहत ये यात्रा हो रही है। आज डॉक्टर खलील भारत मालदीव के बीच दूसरी उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की बैठक में भाग लेंगे। बैठक के दौरान व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी पर दोनों देशों के दृष्टिकोण प्रपत्र की कार्यान्वयन प्रगति की समीक्षा की जाएगी। जम्मू कश्मीर से पहली चेरी मालगाड़ी अगले महीने मुंबई के लिए रवाना होगी। जल्दी खराब होने वाले उत्पादों को जम्मू कश्मीर के बाहर पहुंचाने की नई पहल के अंतर्गत जम्मू रेलवे डिवीजन को 3 जून को कटरा रेलवे स्टेशन से मुंबई तक माल पहुंचाने का अनुरोध मिला है। इस तरह चेरी जैसे जल्दी खराब होने वाले सामान कम से कम नुकसान के साथ अपने लक्षित बाजार तक पहुंच सकेंगे। उत्तर रेलवे जम्मू में वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक DCM उचित सिंघल ने कहा कि कटरा स्टेशन से मुंबई के बांद्रा स्टेशन तक की एक मालगाड़ी में 24 टन माल ले जाया जाएगा। श्री सिंघल ने कहा कि रेलवे और फल उत्पादकों दोनों के लिए ये लाभकारी होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक दिन के दौरे पर आज मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। वे नरसिंहपुर में 3 दिन के कृषि उद्योग समागम का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
कृषि उद्योग समागम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, राज्य सरकार के कई मंत्री और कृषक संगठनों के पदाधिकारी शामिल होंगे। समागम 28 मई तक चलेगा। कृषि उद्योग समागम का उद्देश्य प्रदेश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को प्रसंस्करण और मूल्य आधारित व्यवस्था से जोड़ते हुए निवेश, नवाचार और नौकरियों के नए द्वार खोलना है। समागम स्थल पर एग्री हॉर्टी एक्सपो के तहत आधुनिक कृषि यंत्र, ड्रोन, AI आधारित उपकरण, पॉली हाउस, जैविक और नैनो उर्वरक, दुग्ध एवं शाला उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे। समागम में 8 सरकारी विभागों द्वारा कृषि नवाचारों पर आधारित 90 से अधिक स्टॉल भी लगाए जाएंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
मौसम विभाग ने तटवर्ती और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र में भी तेज बारिश जारी रहने की संभावना है। दिल्ली, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब और राजस्थान में अगले 2-3 दिनों के दौरान गरज के साथ बारिश होने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। और भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी और विश्व चैंपियन डी गुकेश और अर्जुन एरिगेसी आज से स्टावायर में शुरू हो रहे प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में देश का नेतृत्व करेंगे। इसमें पुरुष और महिला वर्ग में 6-6 शीर्ष खिलाड़ी शामिल हैं। आज प्रतियोगिता में डी गुकेश का मुकाबला दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन से होगा। IPL क्रिकेट में कल दिल्ली में हुए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 110 रन से हरा दिया। कल एक अन्य मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस को 83 रन से हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर।
धन्यवाद देवेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात, राजग मुख्यमंत्रियों की दिल्ली में बैठक, भारत के चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने और दिल्ली में आंधी बारिश को अधिकांश अखबारों ने खबरों में स्थान दिया है। जनसत्ता ने मन की बात में पीएम के हवाले से लिखा है, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैन्य अभियान नहीं, बदलते भारत की तस्वीर है। अमर उजाला ने राजग मुख्यमंत्रियों की बैठक की खबर सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, प्रधानमंत्री की नसीहत, ऑपरेशन सिंदूर पर गैर जरूरी बयानबाजी न करें नेता। वहीं हरिभूमि लिखता है, मोदी ने बेवजह की बयानबाजी पर दी हिदायत, आत्मनिर्भर भारत बनाने पर दिया जोर। आतंकवाद पर पाकिस्तान को दुनिया में बेनकाब करने विभिन्न देशों के दौरे पर जा रहे भारतीय दल के बयान भी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण ने अमरीका गए दल का प्रतिनिधित्व कर रहे शशि थरूर का बयान दिया है, पाकिस्तान में बैठकर भारतीयों की जान लेने वालों को चुकानी होगी बड़ी कीमत। जापान को पछाड़, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दाहोद में लगभग 24,000 करोड़ रुपए लागत की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के दौरे पर गए भारतीय शिष्टमंडल ने विश्व नेताओं से कहा, आतंकवाद से मुकाबले के लिए भारत का नया रुख, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। भारत मालदीव उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में। जम्मू कश्मीर से मुंबई के लिए पहली चेरी मालगाड़ी अगले महीने से शुरू होगी। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। और विश्व चैंपियन डी गुकेश आज स्टावेयर में शुरू हो रहे नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के पहले दौर में मैग्नस कार्लसन का सामना करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।